नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से, और आप सुन रहे हैं मुझे शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है, और जिसकी वजह से भले ही हम सब अपने अपने घरों में, कमरों में, एकांत में हों, पर तब भी एक ऐसा मंजर है कि मन अशांत ही रहता है। ऊपर से हो रही अजीबोगरीब घटनाएं मानो जैसे खुद का संयम ही तोड़ देती हैं। पिछली बार की तरह आपसे इस बार भी गुजारिश है कि जैसे ही आप इस बात को सुने, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाएं और आंखें बंद कर महसूस करें मेरे कहे अल्फाजों को। मेरे और मेरे सह लेखक और लेखिकाओं का मकसद आपको इस मुश्किल भरे दौर में थोड़ा इत्मीनान देने का और आपके चेहरे पे खुशी लाने का है। इस बार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संदेश नायक जी की लिखी कहानी जिसका नाम है हमारा बजाज। जनवरी का बुढ़ापा चल रहा था और 1993 अभी एक महीने का होने वाला था। उस शाम जब हम लोग स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पहुंचे तो पता चला बाबा ग्वालियर गए हैं। क्यों गए हैं, इस प्रश्न से हम भाई बहनों को कोई मतलब नहीं था। हाँ, कब आएंगे इससे जरूर था। अब अम्मा ने बताया कि कल रात तक, तब तो मानो हम खुशी से पागल ही हो गए। कल तो संडे है, सारे कार्टून देखेंगे, दिन भर खेलेंगे। आज की रात और कल का पूरा दिन बस हमारा ही साम्राज्य होगा। हम लोग खुशी से नाचने लगे। पिता की छत्र छाया में बच्चों का जीवन अनुशासन के पालने में झूलता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे तब कौन झूलना चाहता है, कौन पालने में बैठा पैर लटकाए जमीन को डोलते देखना चाहता है। तब तो पांव जमीन पर दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। यही हमारी भी स्थिति थी। जब कभी बाबा एक दो दिन के लिए कहीं बाहर जाते, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता था। हाँ, बाबा के ना रहने पर अगर कोई उदास रहता, चिंतित दिखाई देता, तो वो हमारी अम्मा थी। जब कभी बाबा के घर आने का तयशुदा वक्त निकल जाता और शाम ढलने लगती, तब अम्मा के चेहरे का नूर भी शाम की स्याह रातों में तब्दील हो जाता था। हम सब बच्चे तो खुश होकर पूरे घर में ऐसे धमा चौकड़ी मचाने लगते जैसे किसी को परीक्षा की समय सीमा समाप्त होने पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया हो। तब कौन किस्मत की उस मेहरबानी पर खुश होकर उस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम भी अपना इस एक्स्ट्रा टाइम का खेलने कूदने में, एक दूसरे से खींचातानी करने में बखूबी इस्तेमाल करते थे। बस अम्मा हम सबसे बेखबर घर की दहलीज पर बैठी उस रास्ते को ताकती रहती जिधर से बाबा की साइकिल की घंटी बजती और वो रोज लौट कर वापस आते। अम्मा की इस चिंता और उदासी का कारण हमें कभी समझ नहीं आता था। हमेशा एक सवाल हमारे मन में उठा करता कि अम्मा बाबा के बाहर जाने या देर से आने पर हम सब जैसी खुश क्यों नहीं रहती। बचपन एक स्त्री की दशा और दिशा क्या जाने। बहरहाल उस रात से अगले दिन शाम तक हम भाई बहनों ने अपना स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। बस 15 अगस्त और हमारे स्वतंत्रता दिवस में अंतर इतना ही था कि पहले वाले की तारीख घोषित थी और दूसरे वाले की अघोषित, जिसकी घोषणा बाबा के कहीं बाहर जाने पर ही होती थी। अगले दिन जब शाम ढल चुकी और अंधेरा गहराने लगा तो अम्मा को फिक्र होने लगी। बाबा अभी तक नहीं आए थे, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अम्मा अपने आप से सवाल करती दरवाजे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। मोबाइल तो छोड़िए, उस समय हर किसी के पास लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करते थे, हमारे यहाँ भी नहीं था। मोहल्ले में एक दो संपन्न घरों में फोन था, लेकिन बाबा की खुददारी उन्हें किसी और के घर फोन कहाँ करने देती। इसलिए बाबा के घर आने में देरी का कारण जानना नामुमकिन सा ही था। रात और गहरा गई। हमारे छोटे से कस्बे तक आने वाली आखिरी बस निकल चुकी थी और इसी के साथ ही बाबा के आने की रही सही उम्मीद भी। अम्मा ने हमें खाना खिलाया और हम सब लेट गए। अम्मा ने खाना नहीं खाया था। उनको हम सब ने पहले भी बाबा की गैर मौजूदगी में उदास और परेशान देखा था, लेकिन आज उनके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरों ने हम सबको भी मायूस कर दिया था। आज हम सब ने ना तो कोई शोर शराबा किया, ना ही कोई धमा चौकड़ी मचाई, बस शांत चुपचाप लेटे, अम्मा की खामोशी के साथ ही बने रहे। हम सब तो थोड़ी देर में सो भी गए, लेकिन शायद अम्मा सारी रात जागती रहीं। सुबह करीब 6 बज रहे होंगे जब अम्मा ने हम सबको जगाया। हम सब अनमने मन से आंखें मलते हुए उठे तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी और बाबा मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े थे। बाबा बोले, देखो तुम सब लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। इतना कहकर बाबा ने हमें बरामदे में आने को कहा, जहाँ एक नया चमचमाता शानदार स्कूटर खड़ा हुआ था। हमारा बजाज, मेरा छोटा भाई खुशी से उछलता हुआ बोला। हाँ, हमारा बजाज। बाबा ने छोटे भाई को गोद में उठाकर चूमते हुए उसे स्कूटर की सीट पर बैठा दिया और वो आगे झुककर स्कूटर का हैंडल पकड़कर मुंह से बुड़ूम बुड़ूम की आवाजें निकालता उसे चलाने का अभिनय भी करने लगा। हम सब बहुत खुश हुए। हम सब ने बारी बारी से स्कूटर के पास जाकर उसे छुआ, सहलाया और तालियां बजाते हुए हमारा बजाज गा उठे। अरे वही बजाज के विज्ञापन वाला गाना, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। ये गाना उन दिनों लोगों के दिल और जुबान पर राज करता था साहब। छाती पर बाएं तरफ जैसे हमारा दिल होता है, ठीक उसी जगह हमारे नए मेहंदी रंग के स्कूटर पर सामने ही मेटलिक अक्षरों में उसका नाम लिखा था, बजाज चेतक। बाबा इतनी ठंड में ये स्कूटर ग्वालियर से चलाते हुए लाए थे। दिसंबर फरवरी के बीच ग्वालियर में बहुत बड़ा मेला लगता है, ग्वालियर व्यापार मेला। इस मेले में खाने पीने की चीज़ों से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गाड़ियों के मिनी शोरूम अपनी पूरी भव्यता के साथ लोगों का मन मोहने उपस्थित होते हैं। बाबा ने हमारे बजाज को यहीं से गोद लिया था 13,000 रुपये में। उस समय ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। हमारे बजाज के साथ बाबा एक बहुत बड़ा वीआईपी का सूटकेस, जिसमें अब भी बाबा के सर्दियों के गर्म कपड़े रखे रहते हैं, मेरे लिए एक टेनिस बॉल, छोटे भाई के लिए एक प्लास्टिक वाली स्टैन गन और दादी लोगों के लिए कपड़े भी लेके आए थे। अब मोहल्ले में हमारा भी रुतबा बढ़ गया था। भले ही ये रुतबा मोटरसाइकिल वालों से थोड़ा कम था, पर फिर भी साइकिल वालों और लूना वालों से बहुत ज़्यादा ही था। अगले दिन बाबा स्कूटर की छाती पर जहां मेटलिक अक्षरों में उसका नाम बजाज चेतक लिखा था, ठीक उसके ऊपर ही किसी पेंटर से बड़ी दीदी का नाम लिखवा लाए थे, जो मेरे लिए बड़ा कष्टदायक था। मेरा नाम क्यों नहीं लिखवाया? इस प्रश्न से मैंने अपनी अम्मा का जितना सर खाया उसे अम्मा ही जानती होंगी। बाबा से कारण पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं था। बस बेचारी अम्मा पर ही मैं अपनी खींच निकालता रहा। अम्मा ने समझाया कि बेटा दीदी बड़ी है इसलिए उनका नाम लिखवाया है, लेकिन स्कूटर तो तुम्हारे नाम ही लिया गया है और आगे तुम ही तो इसको चलाना है। अब दीदी थोड़े ही ना स्कूटर चलाएंगी। अम्मा की इस बात ने मुझे इतनी राहत पहुंचाई कि स्कूटर मेरे नाम पर है और आगे जाकर मुझे ही मिलना है। बस उस दिन से मैं स्कूटर को अपनी बपौती समझने लगा और अब आए दिन सभी को स्कूटर के मालिकाना हक की धौंस दिखाता रहता। अब तो बस मैं अपना बड़ा होने का इंतजार करने लगा, उस हसीन सपने के सच होने का इंतजार करने लगा जब मैं बचपन से अपने चेतक पर सवार होकर अपने छोटे से कस्बे की सैर पर निकलूंगा। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्टोरी थी। और अब तो मेरे पास भी एक चेतक था, तो मैं भी अब क्या किसी राजा से कम था? मैं अपने चेतक से बहुत प्यार करता। ऐसा लगता जैसे मेरा एक भाई और आ गया हो और परिवार में अब हम 3 भाई हो गए हों। अक्सर स्कूल से लौटकर मैं सबसे पहले उसे छूता, सहलाता, उसके किक पर खड़ा होकर उसे स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश करता और फिर उसकी सीट पर जाकर बैठ जाता। उसकी स्प्रिंग लगी अगली सीट मेरे लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थी। इस सीट पर बैठकर मैं बहुत देर तक झूला करता और सीट के ऊपर नीचे होने से निकलती चूं चूं की आवाज सुनकर मुझे बड़ा मजा आता। मैं अपने चेतक का बॉडीगार्ड था। मेरी गैर मौजूदगी में तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे सामने मोहल्ले का कोई बच्चा मेरे चेतक को कभी छू भी नहीं पाया। अपने दोनों हाथों से चेतक का सुरक्षा कवच बनाए हुए मैंने किसी बच्चे को चेतक तक नहीं पहुंचने दिया। मुझे भले ही चोट आ गई हो, लेकिन मैंने चेतक पर एक खरोंच तक ना आने दी। मेरे बड़े होने तक मुझे उसका ख्याल भी तो रखना था। बस चेतक के साथ मेरा याराना अमिताभ बच्चन नमजद खान वाली याराना पिक्चर जैसा दिनों दिन गहरा होता चला गया। बाबा को जब भी कहीं स्कूटर से बाहर जाना होता तो मैं अपने चेतक को कपड़े से साफ कर बाबा की सवारी के लिए तैयार करता। हफ्ते 15 दिनों में चेतक को बाकायदा शैम्पू से नहलाया जाता, जिसकी जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी थी। उस दिन धुले खिले चेतक की रौनक देखते ही बनती। हमारे चेतक के साथ हमारे पूरे परिवार का रिश्ता बड़ा ही भावनात्मक था। भाई दूज पर दीदी हम दोनों भाइयों के साथ साथ चेतक को भी टीका लगाती। रक्षाबंधन पर उसे भी एक राखी बांधी जाती और दिवाली पर एक दीपक चेतक की सीट पर भी रखा जाता। सारे तीज त्योहारों में हमारी हर खुशी में हमारा बजाज, हमारा चेतक हमारे साथ शरीक होता। उन दिनों में 11वीं में था जब वो दिन आया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अब मैं बाबा की नजरों में इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे चेतक की सवारी की ट्रेनिंग दी जा सकती थी। पहले पहल बाबा ने कोई 5-10 मिनट का थ्योरी सेशन दिया, जिसमें मुझे स्कूटर के पार्ट्स, क्लच, एक्सेलरेटर, गियर और ब्रेक के बारे में बेसिक नॉलेज दी। उसके बाद प्रैक्टिस क्लास शुरू हो गई। बाबा ने बार बार एक ही पट्टी पढ़ाई कि क्लच दबाकर कलाई ऊपर की ओर मोड़ोगे तो पहला गियर लगेगा और जब नीचे की ओर मोड़ोगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा। बोले बस क्लच दबाकर फर्स्ट गियर डालना है, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ते हुए साथ एक्सेलरेटर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। पैर ब्रेक पर रखना है लेकिन दबाना तभी जब जरूरत लगे। बाबा समझाते जाते और मैं हाँ हूँ करता जाता। अगर कहीं मुझे समझ नहीं भी आया हो तो बाबा के डर ने दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं होने दी। ये थ्योरी सेशन सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, पर जब प्रैक्टिकल शुरू हुआ तो समझ आया कि यार ये गाड़ी सीखना तो बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे ही मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, बाबा पिछली सीट पर बैठ गए और अपना आधा ज्ञान तो वैसे ही छूमंतर हो गया। खैर, मैंने हिम्मत करके क्लच दबाया, गियर डाला और एक्सेलरेटर बढ़ाते हुए धीरे धीरे क्लच छोड़ने के बजाय एकदम से छोड़ दिया। चेतक एक कदम छलांग मारकर बंद। मेरी उम्मीद से उलट बाबा ने अपना दिमाग ठंडा रखा और मुझे फिर से स्कूटर चलाने को कहा। लेकिन 2 बार, 4 बार, 10 बार और 12 बार मुझसे यही गलती दोहराई गई। इसी बीच एक बार गलती से ही सही पर चेतक भाई कुछ दूरी तक चल पड़े और फिर इसी खुशी में मेरा हाथ भी एक्सेलरेटर पर बढ़ता गया। बाबा चिल्लाए, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, लेकिन अपने हाथ पैरों को तो जैसे लकवा ही मार गया। स्कूटर अनियंत्रित हुआ, मैं, बाबा और चेतक तीनों ही जमीन में पसर गए। तब बाबा खामोशी की च्युइंगम थूक मुझ पे जो गरजे वो बस मैं ही जानता हूँ। कुछ दिनों के लिए ये टू व्हीलर लर्निंग सेशन बंद रहा, जब तक कि बाबा के दिमाग से गुस्से की धूल पूरी तरह साफ नहीं हो गई। कुछ दिनों बाद बाबा ने फिर से मेरी ट्रेनिंग शुरू की और आखिरकार एक लंबे अरसे तक बाबा के सब्र का इम्तिहान लेते लेते मैं स्कूटर चलाना सीख ही गया। अब तो अक्सर मैं चेतक पर सवार हो शाम को सैर पर निकल जाता। धीरे धीरे मेरी ड्राइविंग अच्छी होती गई और मैं चेतक पर स्टंटबाजी भी आजमाने लगा। अगले कुछ सालों तक अपने चेतक से मेरा नाता अटूट बना रहा। अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने और सिगरेट पीने के लिए घर से चोरी छिपे में चेतक को लेकर थोड़ा आउटर साइड निकल जाता। एक चेतक ही तो था जो मेरे सारे राज जानता था। खामोश सा, बिना किसी उम्मीद के मेरे साथ कहीं भी चलने को हरदम तैयार, मेरा हमसफर। दोनों दीदी लोगों की शादी की सारी दौड़ भाग इसी बाजार से हुई, चाहे वो रिश्तेदारों को शादी के कार्ड्स बांटने की बात हो या बाजार से कुछ भी सामान लाने की या शादी के समय किसी को रिसीव करने और बस स्टैंड छोड़ने की। हमारा बजाज बिना रुके बिना थके दोनों शादियों में एक परिवार के सदस्य की भांति अपनी भागीदारी निभाता रहा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, हमारा बजाज बूढ़ा हो रहा था। अब तो हर जगह नई नई बाइक्स का चलन था, स्कूटर धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अब मार्केट में कम कीमत की अच्छी एवरेज वाली बाइक्स आ चुकी थी, तो कोई कम एवरेज वाला खर्चीला स्कूटर क्यों खरीदता। आलम यह हुआ कि हमारे छोटे से कस्बे में मात्र एक ही स्कूटर रह गया, हमारा बजाज। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक्स थी और उनके बीच में अकेला स्कूटर वाला। पेट्रोल महंगा होता जा रहा था और मेरे बजाज का एवरेज दिन ब दिन कम। अब स्कूटर रखना हाथी पालने से कम नहीं था, उसकी खुराक मेरी जेब पर भारी पड़ने लगी थी। चेतक का अस्थि पंजर अब ढीला पड़ गया था, उसके पुर्जे चिल्लपों करते मेरे निकलने की खबर गली गली देते चलते। अब चेतक की वो रफ्तार नहीं रही, चलते चलते बीच रास्ते में अक्सर बंद हो जाता, जो दाहिने तरफ कुछ देर झुकाए रहने के बाद ही दोबारा स्टार्ट होता। मुझे स्कूटर से कहीं बाहर जाने में शर्म महसूस होने लगी थी। समय सब बदल देता है, कल तक जो शान की बात था अब वो शर्म की बात हो गया था। अब अक्सर लगता कि जल्द ही इसे कहीं ठिकाने लगाएं तो नई बाइक ली जाए। जमाने के हिसाब से अब रुतबा बाइक रखने में हो गया था। मैं और छोटा भाई घर पर आए दिन स्कूटर बेचने की चर्चा छेड़ने लगे। तब एक रात पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा, बेटा एक दो सालों में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर मेरी पेंशन में घर का गुजारा थोड़ा मुश्किल होगा। अब बुढ़ापा भी महसूस होने लगा है। जैसे जैसे हम लोग और बूढ़े होंगे वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी तुम पर और आती जाएगी। हम बीमार भी होंगे और तुम्हारे काम भी नहीं आ पाएंगे। क्या तुम तब अपने अम्मा बाबा के साथ रहोगे, हमारी जिम्मेदारी उठाओगे? तब तुम्हें हमें अपने साथ कहीं ले जाने में शर्म तो नहीं आएगी ना? वैसे बाबा से मेरी कभी कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन आज उनकी इन बातों ने मुझे मेरे बड़े होने का एहसास करा दिया था। मैंने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आपने हमें हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, अब हमारी बारी है, आप भरोसा रखिए मुझ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा बजाज भी मेरी तरह बूढ़ा हो गया है। उसकी सेहत भी अब पहले सी नहीं रही, अब वो हमारे ज़्यादा काम का भी नहीं रहा। तुम ही तो कहते थे कि ये हमारी फैमिली का सातवां मेंबर है, सबसे ज़्यादा लगाव तो तुम्हारा ही रहा है इसके साथ, और आज तुम ही इसे बेचने की बात कर रहे हो, इसलिए ऐसा लगा। बेटा हमारा बजाज केवल एक मशीन नहीं है, ये हमारे परिवार की यादों की जीती जागती तस्वीर है। इसे देखोगे तो तुम्हें अपने बचपन को तलाशने के लिए किसी फोटो एल्बम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बाइक भी ले लेंगे लेकिन अपने बजाज को नहीं बेचेंगे, थोड़ा रुक जाओ। बाबा के अंदर ऐसा कोई सेंटिमेंटल आदमी भी रहता है ये मैं कभी जान ही नहीं पाया था, लेकिन उस दिन बाबा ने की बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज हमारे घर में बाइक भी है और कार भी, लेकिन गैराज में एक स्पेशल कोना हमारे बजाज का भी है। आज भी जब समय मिलता है मैं चेतक को वैसे ही नहलाता हूँ और शाम को कभी कभी अपने चेतक पर सवार होकर शहर को निकल जाता हूँ। आज चेतक हमारे लिए फिर से शान की बात है। आज भी मैं अक्सर अपने चेतक की सवारी करते समय गुनगुनाता हूँ, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी थी ना? जरूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 80 के दशक में मारुति 800 और 90 के दशक में चेतक एक बड़ी क्रांति लेकर आए मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जिसे खरीद कर वो ऐशो आराम को ना केवल महसूस कर पाए बल्कि जी भी पाए। आज की पीढ़ी उस जमाने के इन चीजों के मायने शायद ना समझे, पर जो उस दौर से गुजर चुके हैं वो इस एहसास को जरूर समझ पाएंगे। खैर, मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूंगा और आपसे फिर एक वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।